करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाच जाचे निपत्तभूमि दंडवत उद्घटारती अश्रसादमबुदस्य जनस्य दृष्ट्वा गंधर्वके तव गणे गणनी अंगश्यामलिंछटाभिरवितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जडंजगुदरोति संविदतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्पन्दनिवेशितो जलं ध्यायेन्दां चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनं विरहकात्परया जुहाव उत्तेति तन्मयतया कर्वोभिनेः तं सर्वभूतहृदयं ज्ञाय राधे अभी हम लोग नवदीप धाम सोलह कलश की परिक्रमा करके हम लोग यहाँ लौटे हैं। चैतन्य महाप्रभु की भूमि उदार भूमि, वृंदावन की भूमि रसमयी भूमि, चैतन्य महाप्रभु जी की लीला औदार्य लीला कहलाती है, कृष्ण की लीला माधुर्यमयी लीला कहलाती है। नवदीप धाम औदार्य धाम, वृंदावन रसमय धाम। पहले हमको कुछ समझ में नहीं आता था जिस क्यों आज क्यों ऐसा कहा गया है, मेरी समझ में नहीं आता था, किंतु अब थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी समझ में आती है कि क्यों ऐसा। वृंदावन लीला में तनिक कोई अपराध रहेगा, अनर्थ रहेगा थोड़ा सा भी, यहाँ तक कि मुक्त भी हो जाएगा तो भी वृंदावन भूमि में और वृंदावन की लीला में, कृष्ण राधा की लीला में अधिकार नहीं होगा। केवल मात्र ब्रजभाव से भजन करते 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 प्रकट लीला में सिद्ध महापुरुषों के, सिद्ध परिकरों की कृपा से उसमें कुछ अधिकार हो सकता है, अनर्थमय स्थिति में नहीं। महाप्रभु जी का लीला में अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, अत्यंत नवापराधी व्यक्ति भी, अनर्थग्रस्त व्यक्ति भी धीरे धीरे शासन भजन कर अनर्थ दूर करके चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर सकता है, किंतु उसमें नहीं। क्यों? इसका विचार है, कृष्ण लीला में देखते हैं कि केवल ऋषिचरी और कौन गोपीचरी
स्मृतिचरी
ये लोग केवल उसमें प्रवेश किया है, और सखाओं में भी ऐसे ही हुए, वात्सल्य भाव में भी ऐसे ही हुए। वो सब अनर्थ मुक्त अवस्था में प्रकट ब्रज में जन्म लिया, और अनर्थ मुक्त होकर के भी कुछ कषाय बाकी रह गया था तो नित्य सिद्धा के संग में या स्पेशल भगवान की कृपा से वो हुआ, उसमें प्रवेश किया। बंद कर दो भालू का। चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं जगाई मधाई भी गोपाल चपाल और कितने अनाधिकारी व्यक्ति भी नौतिक धाम को आश्रय करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी को आश्रय करके अत्यंत निम्न अवस्था से साधन भजन किया। कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण ने या गोपियों ने किसी को सनातन शिक्षा जैसा कहीं भी कोई विचार नहीं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर के 90 अध्याय के बीच में, विशेष करके ब्रजवाले में उद्धव संदेश भी है तो वो एकादश स्कंद। तुम लोग दो तुम्हारा दिया उठो तुम्हारा दशम स्कंद में विशेष करके ब्रजलीला के चरित्र में कोई सनातन शिक्षा नहीं, कोई रूप शिक्षा नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी की का मन शिक्षा नहीं और रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत नहीं। क्यों नहीं? वो बहुत पहले हजारों जन्म पहले ही उनका ये सब कुछ दूर हो गया। चैतन्य महाप्रभु के लीला में देखते हैं जगाई मधाई से आरंभ करके गोपाल चौपाल को उद्धार करने के और सनातन शिक्षा रूप शिक्षा रामानंद संवाद पीछे कर्म सब जब ये सब पूरा हो जाएगा कहां तक जाएगा? जहां पर रसराज और महाभाव ने एकत्र हो वहां तक पहुंचा करके तब ही ब्रज लीला में ले जाएगा, इसके पहले नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला की पहली प्रयोजन पहली आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में चैतन्य महाप्रभु के प्रति दास और शांत और दास भाव से सेवा करो। शांत भाव में तुम्हारे अनर्थ दूर होंगे, शांत भाव में रहने पर अंततः शांत भाव आएगा तो कृपालु क्या
बासन
गुड़ी फूटे जाए चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति पहले शांत भाव और फिर दास्य भाव, और जब ये परिपक्व होगा तो वो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में दिखाई देगा और वही नवद्वीप धाम वृंदावन के रूप में दिखाई देगा। चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में भी प्रवेश करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी और हमारे जितने भी गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर तक, प्रभुपाद तक, गुरुदेव तक सबसे पहले बतलाया अनर्थ दूर, अंततः काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य अपराध अनर्थ ये सब दूर, इसीलिए मनस शिक्षा और उपदेशामृत। उपदेशामृत में पहले बतलाया यदि महाप्रभु की लीला में प्रवेश करना चाहते तो प्रतिज्ञा करके बोलो आर नारी बात क्या नहीं नहीं मनोवेग बाको बेगम मनसो बेग क्रोध देवा उपरो उदर उपस्थ बेगम पेतान वेदान जो विषय सर्वाम पृथ्वी सब अनर्थों की जड़ अपराधों की जड़ ये देहात्म अभिमान है और देहात्म अभिमान से ये छह होते हैं और ये छह से ही फिर अपर नामापराध सेवापराध सब होता है, मूल यही चीज। इसलिए सर्वेगों को सबसे पहले जय करने की चेष्टा करनी चाहिए, तो ये करने से शांत भाव आएगा। शांत माने क्या, कृष्ण की सेवा नहीं, वैष्णव की सेवा नहीं, अभी भजन भी प्रारंभ हो गया। शांत अनर्थ दूर होना अपराध दूर होना ये भजन नहीं है, ये तो शांति का लक्ष्य है, इसके बाद में भजन आरंभ हो। इसलिए ये सब चीजों को दूर करना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य को, जिससे ये सब अनर्थ न रहे, जहाँ तक हो सके सबको चेष्टा करनी चाहिए। इसके बाद में ये सब काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जब दूर हो जाएगा, अपराध दूर हो जाएगा, तब प्रश्न होगा जे आने के कहो मेरे जारो तापत्र या नहीं जानी। अच्छा मान ले कि जिसे काम क्रोध लोभ मद मोह रहेगा, ये प्रश्न उठेगा किसी के हृदय में, कभी उठ नहीं सकता आने के, तब तक तो देहात में ही माने भरपूर होकर के काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य में रहे। सनातन गोस्वामी ने कब पूछा, कब पूछा, घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, तुम्हारे पास में क्या है अब, तो सात मोहर तो पहले दे चुका था, अब एक मोहर और है, अब इसको लेकर के घर लौट जाओ। तुम नहीं पूछ सकता है कि आमी के पहले उनको लौटा दिया, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये रहेगा तो ये प्रश्न ही नहीं आ सकता है। इसलिए सनातन गोस्वामी उसके पहले ये सब नहीं पूछा, उसके पहले यज्ञ में यज्ञ के इकट्ठा करने के यज्ञ को करने के लिए आम प्रलो ले आओ, बालू ले आओ, ईंटा ले आओ, बस यही फल है। आ रहा है समझ में, यज्ञ करना चाहते हैं अपने को स्वाहा कर देना, अर्पण करने का नाम है यज्ञ, स्वाहा कृष्णाय स्वाहागति, सब छोड़ करके अब अपने को स्वाहा कर। इसलिए ये सब चीजें जब तक रहेंगी देहात स्वाभिमान पर पूर्ण रूप में रहेगा ये प्रश्न ही नहीं। इसलिए यदि इस प्रश्न को करना है और समझना है तो उसके पहले रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत, उनका मनोशिक्षा और माधुर्य कदम्बिनी का अनर्थ निवृत्ति अच्छी तरह से समझ करके दूर करो। ये सब नहीं रहने से नमापराध भी नहीं होगा, सेवापराध भी नहीं होगा, वैष्णव अपराध इत्यादि नहीं, यही सब कारण है। इसलिए सबको दूर करो, तब तो महाप्रभु जी की लीला में प्रवेश करेगा, और फिर महाप्रभु की लीला में प्रवेश करके तब फिर कृष्ण की लीला में प्रवेश करें। कृष्ण लीला बहुत सुदूर पड़ा, इसलिए प्रारंभिक जो ये नहीं कर लेते हैं और कृष्ण लीला में मनोनिवेश करते हैं वो दुराशा मात्र, इसलिए मनोशिक्षा उपदेश अमृत हो, इसके बाद में सनातन शिक्षा हो, इसके बाद में रूप शिक्षा हो, इसके बाद में राय रामानंद का और रथ का पीछे, और ये सब हो जाने के बाद में तत्वतः जान करके, इसको कहते हैं ज्ञान, उपलब्धि अभी नहीं हुई, इसके लिए फिर भजन करो रागानुगा मार्ग से, जैसे कि रूप गोस्वामी को महाप्रभु जी ने उपदेश, जिन्होंने उनके उपदेश के अनुसार में भक्ति जो सामने सिंधु और उज्ज्वल मणि को प्रकाश किया। तब फिर कृष्ण लीला पीछे बहुत दूर, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सब शिक्षाएं अपने परिकरों के माध्यम से हम लोगों को दिए। इसलिए पहले महाप्रभु जी को शांत रस से, शांत माने क्या, शांत में निष्ठा है ना, इसलिए महाप्रभु जी के प्रति निष्ठा हो जाए, ये भगवत तत्व है, और सब अनर्थ जितना है सब दूर करो पहले, ये शांत रस से उनकी उपासना हो, और इसके बाद में दास रस से उपासना, चैतन्य महाप्रभु को गुरु समझो, भगवान समझो, उनके प्रति दास्य भाव, वो भी मां ज्यादा संपन्न दास्य हो, विषम्भ दास्य नहीं उनके प्रति, फिर इसके बाद में विषम्भ दास होकर क्रम से ऊपर उठते उठते जिसमें हमारा दास्य रस और संत रस परिपूर्ण हो जाएगा, उसी समय चैतन्य महाप्रभु जी जैसे राय रामानंद को देख दर्शन दिया ना, साधम भट्टाचार्य को दर्शन, राधा कृष्ण के रूप में ऐसे ही हम लोगों को भी भजन करते करते दास रस की महाप्रभु के प्रति निष्ठा संपन्न होने पर वो राधा कृष्ण के रूप में, इसलिए हम लोग पहले नवद्वीप में यहां से जब चले मथुरा से, तो हम लोग पहुंचे अपराध भंजन पार्क, अपराध भंजन पाठ कुलिया को कहते हैं, गुरु जी ने चुन करके हमारा अपराध भंजन पाठ में आश्रम बनाया, इसीलिए हम लोग पहले दिन यहां से जाने के बाद में कुलिया में अपराध भंजन पाठ में उन लोग के देवानंद गौर मठ में, नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम ब्रजमंडल ही है, कोई अंतर नहीं, वहां पर भी ये सब जितने भी वन हैं सब नवद्वीप में हैं, कहीं क्रम से हैं कहीं विपत्य क्रम से है, किंतु हैं सभी, भक्ति विनोद ठाकुर जी नवद्वीप परिक्रमा प्रारंभ करने के पहले जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु का उपाख्यान लगा करके आरंभ हुआ। जीव गोस्वामी भी छोटे बच्चे थे, अपने पैतृक भूमि में रहा करते थे, पहले सनातन और रूप के साथ में वो टेलीग्राम राम टेलीग्राम में रहते थे, जिस समय बहुत छोटे थे तो चैतन्य महाप्रभु जी रूप सनातन को संसार से निकालने के लिए बहाना बनाकर वृंदावन का, कि मैं वृंदावन जा रहा हूं और राम के लिए ग्राम में आए, उस समय जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे, महाप्रभु जी के दर्शन से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जीवन एकदम बदल गया, मुक्त पुरुष होने पर भी लौकिक लीला में ऐसा नर्वत दिखला रहे हैं, जीवन पलट गया, महाप्रभु जी चले गए लौट करके जगन्नाथ पुरी गए नहीं वृंदावन और बोले या जिस समय मैं जाऊंगा तुम लोगों को खबर दूंगा और उस समय संसार रूपी कुएं को छोड़ करके तुम लोग भी हमारे पास में चलाना है, हम लोग भक्ति रस का आस्वादन करें। जीव गोस्वामी को लेकर के महाप्रभु जी के चरणों में हमारे रूप गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी बचपन से ही उनको सुनने करते जब जीव गोस्वामी छोटे से उनके चरणों में डाल दिया महाप्रभु जी के उस बच्चे पर कृपा। इसके बाद में रूप सनातन जी कैसे छोड़ करके वृंदावन में चले आए ये सब आप लोग जानते हैं। आने के बाद में जी गोस्वामी जी का मन नहीं लगा, घर पर उन्होंने व्याकरण इत्यादि शास्त्र पढ़े, कुछ शास्त्रों का भी अध्ययन किया और जब वो 15-16 वर्ष के हुए तो चंद्र बाकला बाकला चंद्र देव जी गोस्वामी के लिए रूप गोस्वामी ने काफी रुपये पैसे रख दिए थे, पढ़ेगा लिखेगा और घर का संचालन भी होगा। अब वंश में तीनों भाइयों में वो ही केवल रहे थे और कोई दूसरा संतान इत्यादि कुछ हमारे समय से रूप और सनातन जी ने विवाह भी नहीं किया, अनुपम जी ने भी केवल विवाह किया। जी गोस्वामी जी वहां से नवदीप में आए, उस समय में चैतन्य महाप्रभु जी अप्रकट हो चुके थे, नित्यानंद प्रभु जी ने जी गोस्वामी के सिर पर पैर रखा और नवदीप धाम की परिक्रमा की 16 कोस नवदीप धाम। सबसे पहले सचिव भवन जगन्नाथ भवन को दर्शन कराए और इसके बाद में सीमंत द्वीप, इसके बाद में गोत्रम द्वीप, मध्य द्वीप और उधर से घूमते हुए कोर द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप, रुद्रदीप, मुद्रुन द्वीप और फिर रुद्रदीप, ये 9 द्वीपों को दर्शन करें। जी गोस्वामी को कार्य से यहीं से प्रारंभ होता है और अंतरद्वीप में ये समाप्त होता है। कलयुग में सतयुग में सबसे बड़ा तीर्थ होता है सतयुग में पुष्कर, त्रेता में प्रयाग और द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में ये मायापुर अंतरद्वीप नवद्वीप। सब तीर्थ वहां पर वास करते हैं नवद्वीप, इसलिए नवदीप धाम की परिक्रमा हुई और सब कलयुग में और सब तीर्थ का प्रभाव मंदा हो जाता है, चाहे हरिद्वार हो, चाहे पुष्कर हो, प्रयाग हो, कुरुक्षेत्र हो, सबका प्रभाव मंदा हो जाता है, किंतु नवदीप का धाम का प्रभाव बढ़ जाता है चैतन्य महाप्रभु के आने से, कृष्ण के आने से वहां पर बढ़ जाता है। इसलिए और युगों में जो कुछ नियम करते हैं नवदीप धाम में केवल आकर के कीर्तन करें और महाप्रभु के विचारों को मान करके चले तो सहज रूप में ही भगवत भक्ति हो जाएगी। यहां तक कि अपराधी व्यक्ति भी जगाई मधाई जैसा व्यक्ति भी शरणागत होकर के अंत में भजन करता है तो उसकी भी वो सत्यती हो जाती है, तो और लोगों की तो बात किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने नवदीप धाम परिक्रमा की बड़ी महिमा बताई, एक साथ में ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दासम सप्तम आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति वहां पर नवदीप धाम परिक्रमा में। तो हम लोग पहले दिन अधिवास किया नवदीप ध्यान कुलिया में, अपराध भंजन पाठ। अपराध भंजन पाठ किस लिए कहते हैं कि एक तो जगत गोपाल छपाल नाम के पहले तो दुर्गानंद पंडित वहां पर रहते थे, भागवत के बड़े वक्ता थे, बहुत बड़े भारी वक्ता, किंतु ऐसे वक्ता थे सार रहित, सार उसमें नहीं, अनुभव रहित, सुक्के के पाठ की भांति सुख पाठ, जैसे सुक्का सुख पक्षी राम राम कृष्ण कृष्ण करता है और बिल्ली पंजा से मारती है तो कैं 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 करता है, ठीक वैसे पाठ कर रहे थे शिवाज पंडित। उधर से कहीं जा रहे थे, उनकी सभा में बैठ गए और बरहा पीड़ा में श्लोक की व्याख्या वो लोग कर रहे थे, रश्मयी व्याख्या नहीं बल्कि व्याकरणगत व्याख्या हो गई, व्याकरणगत व्याख्या, एक एक शब्द का व्याकरणगत अर्थ क्या है इस प्रकार का होगा। कभी भाववश श्लोक का अर्थ समझ करके उनके हृदय में और वो मूर्छित हो गए, रोने लगे चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण कर। जितने सब छात्र थे तो जो हमारी पढ़ाई में बाधा पड़ रहा है इलेन को निकाल कर दबा कर दो, ये कहां से पागल आ गया, और उनको 10-12 लड़के पकड़ करके और उनको उठा करके बेहोशी का अंगूठा की स्थिति में उठा करके लेकर के बाहर कर दिया दरवाजे से। जब उनका भावावेश खत्म हुआ तो देखा गया यहां पर पड़े थे। पीछे से चैतन्य महाप्रभु को यह बात मालूम थी, शिवास पंडित वहां पर थे और श्लोक सुनते ही भावावेश हुआ और उसको अपमान करके बाहर कर दिया। महाप्रभु जी बड़े बिगड़े, ये बेटा क्या नाम उसका, देवानंद, वो भागवत पढ़ता है, वहां पर भागवत है ही नहीं है और भागवत का कभी भी एक अक्षर भी नहीं जानता। कल मैं अभी जाकर के उसका भागवत में हार करके फेंक दूंगा, वो भागवत ही नहीं। बहुत बिगड़े, कुछ दिनों के बाद में वहीं पर पुंडरीक विद्यानिधि आए, परम भागवत, इसे आप लोग जानते हैं, ये गदाधर पंडित जी उनके शिष्य हुए थे, तम चैतन्य महाप्रभु उनको बाप बाप कहते थे, पुंडरीक विद्यानिधि थे तो गृहस्थ, किंतु बड़े भावुक और रसिक थे, साधारण नहीं। वो उन्होंने सुना ये देवानंद पंडित उनको बहुत श्रद्धा करता था, तो उनके पास में मिलने के लिए गए, कैसे तुमने आशा किया, शिवाज पंडित को निकाल करके बाहर कर दिया, तो बहुत बिगड़े में है, तुमने जानता नहीं जो स्वयं भगवान, तुम्हारा सर्वनाश होगा, अभी जाकर के क्षमा जल्दी से मांगते। उनकी बात पर उनको विश्वास था, जानते थे ये परम भगवत, जब गए मांगने के लिए क्षमा, कब गए, जब महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद में वहां से लौट करके आ रहे थे शांतिपुर में, शांतिपुर से सब यहां पर आए कल कोलद्वीप में, उसी समय साधु भट्टाचार्य जी के वहां पर गए थे और यहीं पर छिप करके कुछ दिन थे, उसी समय इनको पता लगा और दौड़ करके गए और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके गिर गए और क्षमा मांगे। महाप्रभु जी ने उनको कहा यदि पैर में कांटा फूटेगा तो वो सिर से नहीं निकलेगा, पैर से नहीं निकलेगा, मैंने हमारा पैर कौन है, मेरे वैष्णव लोग, इसे गुरु जी को कहते हैं ओम गुरु पाद पद्म, ओम विष्णु पाद पद्म, विष्णु के चरण कमल, विष्णु के धाम स्वरूप है, भगवान को प्राप्त कराने वाले हैं, भगवान के वो प्रकाश हैं, और तुमने ऐसा अपमान किया, उनको भागवत पूछाता है जाकर के क्षमा मांगने, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं क्षमा कर सकता, सुभाष पंडित ही क्षमा कर सकते, हमारे क्षमा करने से भी नहीं होगा, हम क्षमा भी कर दें तो क्षमा नहीं होगा, इसे किसी वैष्णव के चरण में किसी प्रकार का भी अपराध हो जाए, नामाश्रय ग्रहण करने वाला उसके चरण में किसी प्रकार से तन मन वचन किसी प्रकार से अपराध हो जाए तो उसे जब तक प्रसन्न न हो तब तक प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, और यदि वो अप्रकट हो जाए तब तक फिर निरंतर हरिनाम करने से तब वो अपराध भी हो जाए, तब भगवत भक्ति में अधिकार होगा, नहीं तो कभी भी नहीं अधिकार हो सकता, तब फिर वो सुभाष पंडित वहां पर थे बस उनके चरण में एकदम गिर गए और क्षमा मांगा, उन्होंने कहा कि मुझे लज्जा लग रही है, आप हमसे क्षमा करना, हमने तो आपका अपराध ही नहीं ग्रहण किया। वैष्णव लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने क्षमा कर दिया, महाप्रभु जी ने उनको क्षमा कर दिया, इसलिए उस धाम का नाम
अपराध भंजन,
अपराध भंजन पाठ है कुलिया जी। और गोपाल चपाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनके गोवर्धन हिरण्य गोवर्धन के दो थे, एक एक गोपाल और यहाँ गोपाल चपाल, ये कौन है, पूजा करते थे उनके यहाँ महाप्रभु जब उनके घर में राश नाम संकीर्तन रूपी राश करते थे उस समय में वो दुर्गा का पूजा करने के लिए सेंदूर काली हाणी सू और जवा फूल हाणी में रंग करके और उसमें कालिक लगा करके उसमें फिर चूना लगा करके और वो सब सब रख करके या मरे हुए का खोपड़ी वहाँ रख करके पूजा का द्रव्य रखते, वो अपराध किया। वो भी आकर के यहाँ पर महाप्रभु के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा, महाप्रभु जी ने फिर उनको भी क्षमा करा करके और उनको प्रेम किया, और वो गोपाल हिरण्य गोवर्धन के यहाँ रघुनाथ दास जी के पिता और जेठ के यहाँ वो हरिदास ठाकुर से विवाद कर गया, हरिनाम के द्वारा मुक्ति होती है, और एक दल कह रहा था कि हरिदास हरिनाम के द्वारा मुक्ति नहीं होगी, दो पंडितों के दल में लड़ाई लग गई, शास्त्रार्थ छिड़ गया, वो कहता था जो हरिनाम के द्वारा मुक्ति होगी, वो कहता था हरिनाम के द्वारा कदापि मुक्ति नहीं होगी, गोपाल कहता था जो नहीं होगी और पंडित कह रहे थे जो होगी, इतने में हरिदास ठाकुर नाम करते हुए वहां आए, स्कूल में संस्कृत और बंगला वंगला कुछ नहीं पढ़े कभी, बचपन से ही हरिनाम कर रहे हैं, अद्वैताचार्य जी का संघ है और अशोक वैष्णव का संघ है, और हरिनाम के द्वारा अपने आप तत्व सिद्धांत भी हो सकता है, उनसे पूछा गया, उन्होंने हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से कहा शुद्ध हरिनाम से कृष्ण प्रेम होता है, अरे उसके आभास से ही अपने आप अनायास बिना इच्छा के अनिच्छा की आवक बरियाई, बिना इच्छा के ही मुक्ति अपने आप दौड़ करके वहां पर चली जाती है, हरिनाम करने की जरूरत हरिनाम के आभास से ही, और ये जगत का जो सब धन वैभव रुपया पैसा प्रतिष्ठा पुत्र परिवार ये तो नमापराध से ही हो जाता है, नमापराध यदि कोई करता है तो उसको ये सब चीजें अपने आप हो जाता है, इसलिए शुद्ध हरिनाम से तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, जैसे ये तो दो अंगुल और बढ़ गया, तुम कभी शास्त्र पढ़ा मुसलमान होकर के बाबा जी बन रहा है, नाम से कभी भी मुक्ति नहीं होगी, आभास को पुकारा है शुद्ध नाम से भी नहीं, अब मुसलमान अच्छा तो ठीक है, सब लोगों ने उनका पक्ष हरिदास ठाकुर कर दिया, तो उन्होंने कहा वो गोपाल ने अच्छा तो ठीक है मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि हरिनाम के द्वारा मुक्ति हो गई तो मेरी नाक कान गल जाए, और यदि हरिनाम के द्वारा यदि मुक्ति नहीं हुई तो हरिदास का नाक फल कोढ़ हो जाए और उसे उगल जाए, सब सभा के लोग हाहाकार कर रहे, ये क्या कहा, ये सिद्ध महात्मा है, अभी कुछ ना कुछ ये होगा। फिर गोवर्धन और उनके जो पिताजी थे दोनों ने उसको वहां से बाहर कर दिया, जाओ हमारे सभा में आज से जीवन में कभी मत आना। अपराधी वैष्णव के चरण में अपराध करता, उनसे तर्क वितर्क करता है और उनका अपमान कर रहा है, अभी निकल जाओ। हरिदास ठाकुर जी बड़े लज्जित हैं, मेरे लिए इसका अपमान किया, उसका अपराध नहीं किया, किंतु फिर भी उसको अपराध। दो दिन के बाद ही में उसका नाक एकदम गल करके कुष्ठ व्याधि से गिर गया, चूने लगा, मक्खियां सब भन भनाने लगी। अब वो इस चिंता में महाप्रभु जी के कभी आए हरिदास ठाकुर से चले गए। वही उसी समय में जिस समय देवानंद पंडित को अपराध किया, उसी समय में ये गोपाल भी वहां पर गया और महाप्रभु के चरणों में क्षमा मांगी। कहे मैं नहीं क्षमा कर सकता, मेरे सामर्थ्य की बात नहीं, तुम जाओ हरिदास ठाकुर के यहां, वो यदि क्षमा कर दें तब हो। तब वो उनके चरणों में गिरा। वो लोग तो अपराध लेते नहीं, 22 बाजार में मारा तभी उन्होंने अपराध नहीं लिया, तो ये क्या ले। महाप्रभु ने देखा जी इन्होंने क्षमा कर दिया, क्षमा के अवतार थे हैं, क्षमा कर दिया साथ ही साथ में। फिर उसका नाथ खान साहब इसलिए अपराध, गुरु जी ने देखा जी हमारे पास में सब लाखों लाखों जीव आ रहे हैं, अपराधी जी हरिनाम में रुचि नहीं होगी, विषयों में मति होगी, नमा अपराधी हुआ होगा, इसलिए यहीं पर रखा जाए अपना नाम और यहीं पर आए अपराध भंजन पाठ में, उनके अपराध क्षमा हो, हरिनाम करें और मनस शिक्षा उपदेशामृत इत्यादि अध्ययन करें और ये सब लीलाओं का श्रवण करें, धीरे धीरे शांत रस होगा, इसके बाद में राष्ट्ररस का भावना आएगी, इसके बाद में महापुरुष जी को ही राधा कृष्ण की, इसलिए ज्ञान वहां पर बराह देवी हैं, उसको कहते हैं कोलदीप, कोल मने बराह, कौन बराह, जो ब्रह्मा के नाक से निकल करके वो पानी में कौन जो पृथ्वी वो सब डुबा दिया, हिरणाक्ष मैंने वो प्रलय बारी में सब कुछ डूब गया और उसको पृथ्वी को एकदम रसातल में ले गया, पृथ्वी को रसातल में ले जाना मैंने क्या, पृथ्वी के धर्म को एकदम नष्ट कर दिया, इसी का नाम है रसातल, रूपक के रूप में पानी दिया गया, ये पानी के एकदम अथाह पानी में लेकर फिर बात किया, अर्थात पृथ्वी से धर्म को एकदम प्रशासन भी चली गई, पृथ्वी का कोई पता नहीं ये कहाँ है, ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे कहाँ करेंगे चिंता कर रहे थे, चतुर्श्लोकी संवाद हो गया था, इसके बाद में सृष्टि होनी, तो उन्होंने देखा जी उनके नाप से एक छोटा सा मैल गिरा, देखा जैसे वो पहले चावल के जो कण में जो लाल लाल कीड़े होते हैं घूम है? और उसमें हाथी निकला और देखते देखते वो डबल ट्रबल एकदम होते होते थे भयंकर, एकदम पहाड़ जैसा, हिमालय पहाड़ जैसा होकर के पृथ्वी पानी में एकदम, वही बड़ा दे वहां पर उनका अपना स्थान है, इसलिए उसको कोल द्वीप कहते हैं। सतयुग की बात है, ब्राह्मण वहां पर एक रहता था, वासुदेव बरादेव की उपासना करता था, क्यों, भक्ति का भी प्रथम विकास है, पहले मत्स्य वाला और इसके बाद में दूसरा है कच्छप और तीसरा है ये बरा, ये विकास भक्ति का और भगवत अवतार का और भक्ति का भी विकास। बरा पानी में भी चल सकता है और स्थल में भी रहेगा और सुनने की बड़ी अद्भुत शक्ति उसकी, विलक्षण शक्ति, सुन करके कहीं भी जा सकता है, किंतु पशु के रूप में, इसलिए परादेव सतयुग में वहां पर उनका स्थान माना जाता है। तो वो वासुदेव विप्र उनकी आराधना करता, आराधना करते 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 शास्त्र वर्ष में प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में तुम बड़े सौभाग्यवान हो, देखो मैं कुछ दिनों के बाद ही ये आगामी द्वापर युग शेष होने के बाद ही थोड़े दिनों में ही अमुक अमुक भविष्यत मंत्र के मनमंत्र के 27वें चतुर्युग के समाप्त होने पर 28वें चतुर्युग में उसमें भी कली के रूप में प्रारंभ में मैं ब्राह्मण के घर में जगन्नाथ के रूप में गौरांग रूप धारण करूं और उस समय तुम भी पैदा होगा और तुम हमारी हमारा दर्शन करेगा, हमारी लीला में प्रवेश करेगा। वही शायद सदानंद विप्र के रूप में वहां पर प्रसिद्ध मुझे याद नहीं है ठीक किंतु है
सदानंद योगी
के रूप में वो आए और महाप्रभु का महाप्रभु जी ने वो उनको रूप दर्शन के उसी समय में दिया। मैं इस कलयुग में मैं इस रूप में आऊंगा और तुम हमारे लीला का रस स्वादन करोगे। उस समय तुम्हें हम लोगों के पार्करों के संपर्क में तुम्हारी भक्ति वृत्ति बढ़ेगी और मधुर रस में वो परिणत होगी। ये किस रस के भक्त थे? शाम परादेव का उपासना किस रूप में होगी? शांत रूप के लिए। अंत में महाप्रभु का दर्शन हुआ तो उन्होंने दास्य में बढ़ा दिया और कहा जाओ वहां पर, अब वहां पर आराधना करो हमारे भक्तों के साथ में और फिर जब हमारे परिकर लोग आएंगे उनके साथ में तुम्हारी क्रमशः लोग बढ़ते 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 तब उस रस में राधा कृष्ण के रूप में परिणत। वो जो स्थान है ऊंचा होने के नाते वो गोवर्धन कहलाता है, हम लोगों का आश्रम के पास है, जहां पर कि वो प्रौढ़ा माया उसको कोड़ामा कहते हैं, कोड़ामा जिनका मुख जल गया है जली हुई है, ये नहीं प्रौढ़ा माया से हुआ है, कोड़ामा नहीं। वो नवदीप के जितने लोग हैं सब जानते हैं कि कोड़ामा माँ पूरी गई थी माने माँ जल गई है, वो ऐसा नहीं प्रौढ़ा माया। शंकर जी हैं, महादेव जी वृद्धसी, वृद्धसी माने क्या? सदाशी। वृद्ध माने क्या? सदाशी। और ये क्या है? प्रौढ़ा माया। ये लोग कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक के ऊपर में सदाशिव लोक में। ये सदाशिव और वहां पिता भक्त लोग ये लोग धाम की रक्षा के लिए वहां पर आते हैं, इसलिए प्रौढ़ा माया का स्थान है। माया दो नहीं है, एक है। बहिर्मुख लोगों के यहां वो माया माया के रूप में और अंतर्मुख लोगों के सामने वो योग माया, उनसे योग योग युक्त कृष्ण से योग युक्त कर दिया। बिना योग माया के कृष्ण लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उनको कहते हैं योग माया। यही योग माया कृष्ण लीला में पौर्णमासी के रूप में जो गोपियों और कृष्ण को का मिलन कराते हैं, जीवों के साथ में भगवान के साथ में जीव का मिलन कराने का ही काम हुई योग माया। और बद्ध जीवों के निकट वही महामाया के रूप में दुर्गा के रूप में वो स्थान ऊंचा होने के नाते गोवर्धन भक्ति विनोद ठाकुर ने आविष्कार किया, जो अपने योग से देखा समाधि योग में, समाधि योग में देखा है। जैसे ये गिरिराज गोवर्धन पास में यमुना बह रही है ना, उसी के समय बीतते तो यमुना जी बह रही और उसके पास में उनकी बड़ी बहन गंगा जी बीत रही, उस पार पूरब की तरफ में यमुना कि पश्चिम की तरफ में यमुना और पूरब की तरफ में गंगा जी, और जमुना जी की सहायता से ही प्रयाग से प्रयाग ये गई गया। ये किस लिए? जमुना अपनी बड़ी बहन को लाने के लिए, अपने अंक में लेकर के उनको जमुना जी को वृंदावन छोड़ करके जाने की कोई जरूरत नहीं, किंतु बड़ी बहन ने बहुत अन्य विनय किया, ये तुम इतना सौभाग्यवती हो जो कृष्ण लीला का दर्शन करती हो, तुम कृपा हमारे ऊपर। तो उन्होंने प्रवित होकर के और प्रयाग जाकर के गंगा को अपनी गोद में समेट करके ले गई नवदीप धाम में, हमारे प्रभु यहाँ पर है पीड़ा कर रहे हैं। अब उनका नाम हो गया है गोगानंद, बल्कि दोनों मिलकर के हैं राधा और किशोर किशोरी जी भी महाभाव रसराज दोनों मिलकर के यहाँ पर। चलो हम तुमको दर्शन कराते हैं और आस्वादन कराते हैं। इसलिए जमुना जी पश्चिम में और पूरब में गिरिराज गोवर्धन के पास ही में उस पार में गोकुल, उस पार में गोकुल और उस पार में राष्ट्रस्थली वृंदावन। गोकुल है मायापुर अंतर्द्वीप और हम लोग का आश्रम गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बसा हुआ राष्ट्रस्थली। इसे बुद्ध जी ने वहां पर राष्ट्रस्थली में उसके पास ही में थोड़ा सा और आगे जाने पर ऋषि द्वीप में राधा कुंड और श्याम कुंड, हम लोग राधा कुंड और श्याम कुंड कुल द्वीप की सीमा ही पर वो ये ऋषि द्वीप में उसके पहले वो कुल द्वीप। कुल द्वीप के पास ही में पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग कौन कौन? गंगा के साथ में अलकानंदा और अलकानंदा और मंदाकिनी अलक्षित रूप में। मंदाकिनी आती है, अलकानंदा आती है केदार बद्री से, केदार से अलकानंदा, और मंदाकिनी आती है गंगोत्री जमुनोत्री से बद्री नारायण होकर के आती है। दोनों रुद्र प्रयाग में मिल जाते हैं, देव प्रयाग में। अब तब फिर भगीरथी में वो दोनों मिल जाते हैं। तो भगीरथी है गंगा,